أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ چلے آج ہم ایک نئی بک کو انشاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. کتاب کا نام ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی. آپ میں سے جن کے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے نام کے ساتھ کیا ہے, قرآنی صورتیں. یہ قرآن کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے, صورتیں کیا ہوتی ہیں یہ بھی پتہ ہے. نظم اور جلی یہ دو لفظ شاید آپ کو سمجھنے مشکل ہوں گے. تو نظم کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں اردو میں نظم؟ شعر, نظم, نثر کے مقابلے پہ آتا ہے. تو نظم وہ ہوتا ہے جس میں ردھم ہوتا ہے, جیسے قافیے پہ ردیف, ردیف پہ قافیہ ہے. تو نظم کو آپ بیسیکلی خوبصورتی کہہ سکتے ہیں. اور جلی کہتے ہیں واضح, جلے حروف میں, یعنی قرآن پاک کی صورتوں میں جو ایک ربط پایا جاتا ہے وہ اس کا نام ہے. نیچے اگر آپ دیکھیں تو زمانہ نزول ہے, کتابی ربط ہے, کلیدی الفاظ اور مضامین ہے, نظم جلی اور مرکزی مضمون. یہ سب کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. یعنی ہر صورت کیا زمانہ نزول کیا ہے, کب نازل ہوئی, مکی تھی کہ مدنی تھی, اور مکہ کے کس دور میں ہوئی, مدینہ کے کس دور میں نازل ہوئی. پھر دوسری چیز کتابی ربط ہے, اس کا ہم انٹرو پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو اس کتاب کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا یہ کیا ہے. اور یہ کتاب فہم قرآن میں معاون ایک اہم کتاب ہے. اس کو مرتب کیا ہے خلیل الرحمن چشتی صاحب نے, اور یہ بیسیکلی ایک بہت خوبصورت کوشش ہے ان لوگوں کے لیے, خاص طور پہ جو پہلے سے قرآن پاک کو سمجھ چکے ہیں لیکن بعض دفعہ ان کو کچھ صورتوں کا ربط نہیں ملتا اور اب وہ مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کتاب نئے لوگوں کے لیے بھی ایک خوبصورت چیز ہے کہ جو بہت ڈیٹیل سے قرآن کو پڑھنے کا وقت نہیں پاتے, تو وہ اس کتاب کے ناطے سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کتاب میں مختصراً طور پہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کا پیج نمبر 6 کھول لیں تو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, آپ بھی سنیے اور جو بات یاد رکھنے کی اور لگے اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ابتدائیہ, ابتدائیہ کس کو کہتے ہیں؟ ابتدا, شروع کرنا. کوئی بھی کام کرتے ہوئے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اصل میں ہے کیا. تو ابتدائیہ میں ہمیں یہ سارے جو شروع میں چیزیں پڑھی ہیں اس کا انٹروڈکشن ملے گا. خطبہ ہے اور یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اپنے ہر خطاب سے پہلے, اسی سے یہ الفاظ ہیں اور ہم بھی سوچ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہم اس برکت کو حاصل کریں گے. ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلله فلا هادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدَتٍ دَلَالَةٍ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہاں اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن میں دینا چاہوں گی. اس کا ترجمہ آپ میرے ساتھ سن لیں اور لکھنا چاہیں تو لکھیں, بہت ہی پیارا ہے. اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ, بے شک تعریف ساری اللہ کے لیے ہے. احمدہ, میں اس کی تعریف کرتا ہوں, اسی کے ساتھ ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں آپ. وَاسْتَعِينُهُ, اور میں اس سے مدد طلب کرتا ہوں. دیکھیے ہم پڑھتے ہیں نا نستعین, تو نون ہم ہوتا ہے اور استعین میں, ہم اس کی مدد چاہتا ہوں. واستغفرہ, اور میں اس سے بخشش طلب کرتا ہوں. واعوذ باللہ, اور میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, کس چیز سے؟ من شرور انفسنا, اپنے نفس کے شرور سے, شر کی جمع, یعنی نفس کی برائیاں, نفس کی جو خرابیاں, اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کیا ہمارے نفس کی بھی کوئی برائیاں ہوتی ہیں؟ بہت ساری ہوتی ہیں جو ہمیں شیطان کی طرح بہت زیادہ مشکلات میں ڈالتی ہیں. وَمِن سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا, اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. کن دو چیزوں سے پناہ مانگی ہے؟ نمبر ایک نفس کی برائیوں سے, اور نمبر دو اعمال کی برائیاں. آپ دیکھیں دو چیزیں, نفس کی شرارتیں یا شر اور اعمال کی برائیاں, یہ ہیں دو بڑی چیزیں جس سے ایک بندہ ہر وقت اپنے آپ کو بچاتا رہے. پھر اس کے بعد اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے, میں یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جسے ہدایت دے اللہ, فلا مضل لہ, کوئی اس کو بہکا نہیں سکتا. ومن یضلل, اور جس کو وہ بہکا دے یا وہ بھٹکا دے, فلا ہادی لہ, پھر फिर उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। ये बात ज़रा कम ही समझ आती है लोगों को, तो इसको समझ लीजिए कि हिदायत और गुमराही दो चैनल हैं जो बंदे के हाथ में होते हैं। जो चैनल आप घुमाना चाहेंगे अल्लाह आपके लिए आसान कर देगा। और इसी सिफत से अल्लाह ताला का नाम अल हादी और अल मुदिल है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अल्लाह की तरफ है। वशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, ये कि नहीं है कोई माबूद मगर वही अकेला है, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं, वशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, ये के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं, अरसलहू बिल हक्की उसने भेजा उसको, किसने किसको, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल हक्की हक के साथ, बशीरन बशीर बनाकर, खुशखबरी देने वाला बनाकर, व नज़ीरन और नज़ीर बनाकर यानी डराने वाला बनाकर। अम्मा बाद, अम्मा कहते हैं इसके बाद, बाद किसके बाद, इससे ऊपर क्या हुआ है, इसको कहते हैं हम्दो सना। अम्मा बाद जहां भी लफ्ज आए ना, अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ के बाद। अक्सर लोग खुतबे के शुरू में बस यही बात कहते हैं, अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस, तो मतलब यह होता है कि अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ और तकदीस बयान करने के बाद। क्या बात है, फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, फ़इन्ना पस बेशक, खैरल हदीसी सबसे अच्छी बात किताबुल्लाह ही अल्लाह की बात है। पहले बात हुई थी अल्लाह की, फिर नबी की और अब किताब की, ये तीन ही चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हैं। वह खैरल हजी और सबसे बेहतर तरीका, हदी क्या है तरीका, ये किस तरह, देखिए लफ्ज़ हिदायत और हदिया जहन में ले आइए, तो इहदिनस सिरात को भी जहन में ले आए, तो अल हदी की सूरत में जाता है ना, हद ही जो इस पे अराब लगे हुए, तो इससे मुराद तरीका जिंदगी किसका है, हज मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। यानी सबसे अच्छी बात अल्लाह की किताब है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, और सबसे अच्छा लाइफस्टाइल तरीका जिंदगी उसवे हसना मोहम्मद रसूलुल्लाह का, यही हम कहते हैं ना किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह, कुरान कहता है और नबी सल्लम करके दिखाते हैं। वशर्रुल उमूरी और सबसे बुरे काम, यानी कामों में से सबसे बुरा काम क्या है, मुहदसातुहा उसके नए काम। मुहदस कहते हैं नए को, जैसे लफ्ज़ बिदत है ना, उसी से मुहदस, इसमें हदस छुपा हुआ है उसमें बिदा है, तो बदा जिसे अल्लाह ताला का नाम अल बदी भी है, पहली दफ़ा पैदा करने वाला, बगैर मॉडल के पैदा करने वाला, और मुहदस हदीस, हदस नई बात, क्यों बात को हदीस क्यों कहते हैं, क्योंकि हर बात नई होती है ना, जैसे जो बात मैंने अभी नहीं की अब मैं करूंगी तो आप कहेंगे अच्छा जी ये बात आपने अब की है, तो मुहदस और बिदा एक ही लफ्ज़ है दो मुख्तलिफ रूट से। वकुल्लु मुहदसतिन और हर नई बात बिदअतुन बिदत है। अब यहाँ जो लफ्ज़ है ना बिदत, ये बिदत ही है तर्जमा, जिसको अल्लाह के नबी ने बिदत कहा ये कह लीजिए, यानी दीन में इजाफा। वकुल्ला बिदअतिन दलाला और हर बिदत गुमराही है, वकुल्ला दलालतिन फिन्नार और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। कितने प्यारे लफ्ज़ हैं, देखिए मोतियों की लड़ी नहीं है, है ये नज़मे जली के नहीं, अल्लाह की बातें, नफ्स की शरारतों से पनाह, अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह ही बंदे को बहकाता है जब बंदा बहकना चाहे, फिर रसूलुल्लाह की बात, उनके बंदे और रसूल होने की बात, फिर उनके बशीर और नज़ीर होने की बात, और उसके बाद कुरान की बात, कुरान को बेहतरीन बात कहकर नबी के उसवे की बात, और उसके बाद बिदत, यानी ऊपर चार चीज़ें बयान कर दी, ये है दीन। इसके बाहर जो चीज़ है, इस ब्रैकेट से बाहर है, वो मुहदस है, और मुहदस बिदा है, और बिदा दलाला है, और दलाला आग में है। मैंने बहुत शुरू में जब अपना ये सफ़र शुरू किया था, तो ये आखिरी जुमले ने मुझे बहुत हिला दिया था, कुल्लु बिदतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हम तो नेकियाँ इसलिए करते हैं कि फिल जन्ना जाएँ, तो नए काम दीन में इजाफे जो होते हैं ये आग में ले जाते हैं। तो बहरहाल हम भी अल्लाह ताला से बड़ी आजजी के साथ ये इब्तदाई कलिमात पढ़ने के बाद इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कुरान मजीद की 114 सूरतों का नज़म जली हाजरे हिदमत है। ये कई सालों पर मुहीत काम है जिसे बहुत पहले शाया हो जाना चाहिए था, लेकिन मुख्तलिफ दाखली और खारजी असबाब के सबब ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। मैं समीमे कल्ब से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस काम की तकमील हो गई। अगरचे ये साल मेरी ज़िंदगी के सख्त तरीन सालों में से है, नेक लोगों के दर्जात बुलंद करने के लिए उन्हें आजमाइशों में मुबतला किया जाता है। हम जैसे गुनाहगार और ख़ताकार मामूली इंसानों पर आजमाइशों से गुनाह झड़ जाते हैं। क्या मतलब है कि ये लिखने वाले लिखते हैं कि मेरे ऊपर जो आजमाइशें आई हुई हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरे गुनाहों की सज़ा है। वक्त को ऐ सफ़ी बुरा न कहो, वक्त पैगम्बरों पर आया है। मैं अल्लाह ताला से कवी उम्मीद और तवक्को रखता हूँ और पुख्ता ईमान भी कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा और अजियत रसानियों का सिलसिला अता फरमाएगा। इस किताब में हर सूरत के हवाले से पहले ज़माने नज़ूल की बहस हुई, तो पहली चीज़ क्या हम इस बुक में सीखेंगे? सूरतों का ज़माने नज़ूल, कब उतरी, कैसे उतरी। और आपको पता है कि सहाबा में इब्ने मसूद गालिबन कहा करते थे कि मैं हर सूरत के बारे में ये तक कह सकता हूँ कि कब उतरी, गर्मी में उतरी कि सर्दी में उतरी। ये सारी बातें आगे आएंगी, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक सहाबी की तरफ इसको मंसूब किया जाता है, इस जुमले को। फिर इसके बाद फिर सूरतों की बाज़ खसूसियात का जिक्र है। खसूसियात क्या होती हैं? हाइलाइट्स, ख़ास बात। जैसे लोग पूछते हैं स्वीडन की क्या चीज़ मशहूर है, अच्छा नॉर्वे की क्या चीज़ मशहूर है, तो ख़ास चीज़ होती है ना, वही चीज़ है इधर। इसमें सबसे अहम बात क्या है? फिर जिस सूरत की फजीलत में सही अहादीस मिल सकी हैं, इनको दर्ज कर दिया गया है। हर सूरत का अगली और पिछली सूरत से रब तलाश किया गया, ये तीसरी चीज़ है। पहली चीज़ ज़माने नज़ूल, दूसरी खसूसियात यानी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हाइलाइट्स उस सूरत के, तीसरी चीज़ सूरत का पिछली सूरत से रब। ये ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, पिछली बात से आगे ना जोड़ें तो वो बात बनती नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद सूरत के अहम और कुलीदी मजामीन का खुलासा दर्ज किया गया, ये पांचवी चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें। कुलीद कहते हैं चाबी को, यानी हर सूरत में एक मेन चीज़ होती है। जैसे मसलन आप देखिए कि सूरत अलनाम का जो थीम है वो शुक्र है और नाशुक्री है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सूरत अलराफ का थीम जो है वो इंतज़ार भी अयामिल्ला, जबकि सूरत अलनाम का इंतज़ार भी अयामिल्ला तो है, आराफ का जो सूरत अलनाम है उसका क्या है? आला इल्ला, इंतज़ार या तस्कीर भी अयाम इल्ला। तो अब ये कुलीद होती है, यानी हर सूरत का एक मिजाज है। जैसे आप कहते हैं ना करेले गर्म होते हैं, आम मीठे होते हैं, मतलब उसका एक अंदर का बुनियादी नुक्ता, अब बुनियादी नुक्ता कह लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद सूरत का नज़म, एक तो था पिछली सूरत से ताल्लुक, सूरत का नज़म क्या, जिसको मेलोडी कहते हैं इंग्लिश में, मेलोडियस रिदम है। जैसे आप कहते हैं वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, तो ये जो सूरत का एक सौती हुसन है, या जैसे आप मुख्तलिफ कारियों की आवाज़ में सुनते हैं तो आपको मज़ा आ रहा होता है ना, वो चीज़ इसमें हम देखेंगे। और फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या है, इसके बाद सूरत का नज़म बताया गया कि कितने पैराग्राफों पर मुश्तमिल, और हर पैराग्राफ का ज़ेली मज़मून, क्या ज़ेली किसको कहते हैं? सब, एक बुनियादी मज़मून, एक उसके अंडर आने वाली उससे छोटी चीज़ है। आखिर में तमाम पैराग्राफों को जोड़ते हुए सूरत का मरकजी मजमून बयान किया गया, तो आप कह सकते हैं ना कि दरिया को खूजे में बंद करने की कोशिश है। कुरान वाकई एक समंदर है, उसको हम पूरा जान नहीं सकते, लेकिन इतने मुख्तलिफ एंगल से जब आप एक एक सूरत को पढ़ें तो फिर कुछ ना कुछ तो दोस्ती होगी ना। मुझे ये बातें पढ़ते वैसे लग रहे हैं जैसे हम अपने भाई बहनों के मिजाज से आगाह होते हैं ना, ये है ही कंजूस, इसको छोड़ दो, ये बड़े खुले दिल का है और ये दिल में रखता है, ये माफ़ कर देता है, हर एक का है ना एक मिजाज, तो फिर हम उससे फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रखते या फिर हमें बुरा नहीं लगता, हम कहते इनकी तो आदत है। तो ये सूरतों की हम आदतें पढ़ रहे हैं, कह लें कि हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी और गहरी इन सूरतों के साथ इसको पढ़ने के बाद। अब एक सवाल है, जी आप पूछिए। ज़ेल नीचे, उससे अंदर, सब ज़ेली उसी का मुअन्नस है ना, यानी ज़ेली मीन उसके अंडर आने वाला है, हर पैराग्राफ का एक टॉपिक है और टॉपिक के अंदर फिर सब टॉपिक। हाँ जी, अब ये सवाल है कि ये ज़रूरत क्या है जी? लोग कहेंगे इतनी देर में आप पूरा सपारा पढ़ लेंगे, आप एक ज़रूरत पढ़ लें, ये क्यों कर रहे हैं? तो आइए देखते हैं कि इस तर्ज तफहीम का बुनियादी मकसद क्या है। कोई पूछ सकता है आपसे, भाई ये आप क्या, आपने आपको मुश्किल में डाल रही हैं, आपको इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? तो फिर वही बात है कि हम अपने साथ रहने वालों की क्यों आते जानते हैं, ताकि फिर हमारे उनसे झगड़े ना हों, फिर हम उनको फ़ायदा दें, हम उनसे फ़ायदा लें। तो यही चीज़ कुरान से दोस्ती और मोहब्बत के लिए भी लाजमी है। इस किताब की मरबूत, मरबूत कहते हैं रब्त से जुड़ी हुई, यानी किताब टूटी भी नहीं है। बाज लोग बात करते हैं ना, ऐसे लगता है फूलों की झड़ियां हैं उनकी आवाज़ में या उनकी बात में, और कुछ टूटे टूटे कटे कटे जुमले बोलते हैं। तो कुरान के मरबूत, तो मरबूत तफहीम, तफहीम कहते हैं फहम को, अंडरस्टैंडिंग, यानी इस किताब को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने का बुनियादी मकसद जदीद तालीम याफ्ता तलबा को कुरान के नज़म जली यानी मैक्रो स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर नज़म जली का तर्जमा इन्होंने क्यों किया है, यानी एक सफ़े पे आपको वो पूरी सूरत का जो स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया जाएगा। आप इसमें ग्राफ्स भी देखेंगे इंशाल्लाह कि एक पेज पे आपको पूरी सूरत का रब नज़र आता है। ठीक है, इसको तफसील से और नज़म खफीफ यानी माइक्रो स्ट्रक्चर को इख्तसार से मुतारफ कराना है, यानी हर सूरत के शुरू में हम एक पिक्चर देखेंगे जिसके अंदर उसके मज़मून है, वो उसकी मैक्रो है, एक ही पेज पे सारा आ गया, लेकिन फिर उसकी मज़ीद बारीकियाँ जो है वो तीन चार सफ़ों पे मुहित होती हैं अमूमन एक सूरत की, ताकि वो लफ्ज़ को लफ्ज़ से, जुमले को जुमले से और पैराग्राफ को पैराग्राफ से जोड़ने का फ़न सीख सकें और रबते कलाम और वहदत को दरियाफ्त कर सकें। वरना अमूमन यही देखा गया है कि तुलबा अरबी ज़ुबान पर मामूली दसरस के बाद बहुत हद तक सही तर्जमा करने की इस्तेदाद यानी कुव्वत ताकत तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन फहमे कुरान से बहुत हद तक महरूम रहते हैं। ये आपने देखा होगा, फहम नहीं क्लियर होता, तर्जमा याद हो जाता है लोगों को, तो आप कह लें कि कुरान का फहम समझने के लिए ये अंदाज़ बहुत ज़रूरी है। वो इमारत के लिए दरकार तमाम खाम अशिया, खाम किसको कहते हैं, रॉ को, जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट बजरी ईंटें हैं, इसको तो पहचान लेते हैं कि ये ईंट है, ये लोहा है, ये सीमेंट है, लेकिन इमारत के मखसूस मकसद को समझने से कासिर रहते हैं। मिसाल समझ आई, यानी ये बिल्डिंग बनी किस चीज़ से, ये तो लोगों को पता है, लफ्जी तर्जमा क्या है, ईंटें हैं ना छोटी छोटी, लेकिन वो पूरी सूरत आपको क्या देती है, उसका क्या कमरा, किस काम आना है, उधर किधर जाना है, ये नहीं आता। तो इसमें एक किस्म की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कुरान पाक की। शहतीरों यानी बीम्स का क्या मकसद है, इमारत का इस्तेहकाम और लोड ट्रांसफ़र होता है, एक मजबूत और मरबूत कलाम में भी इब्तदाई बात को किसी और मुनासिब जगह मुनासिब अंदाज में दोहराया जाता है, इससे आप रजू तलब हवालों यानी क्रॉस रेफरेंसेस का भी नाम दे सकते हैं। कुरान चीज़ में ये चीज़ बहुत आम है, जैसे सूरत अर्रहमान में जुल जलाली वल इकराम का लफ्ज़ दो मरतबा इस्तेमाल हुआ है, दरमियान में भी और आखिर में भी। कुरान अल्लाह का कलाम है, ये ज़िंदा मौजज़ा है, इसकी तासीर दरअसल इसकी ज़ुबान, इसकी बलागत, इसके असालीब, असालीब किसकी जमा है, असलूब की, और असलूब कहते हैं स्टाइल को, यानी उसका एक स्टाइल क्या है, इसके मजामीन, इसकी तसरीफ, तसरीफ किसको कहते हैं, बार बार एक चीज़ का पेश करना, सरफ या सरीफ व तसरीफ, यानी बाज़ दफ़ा आप देखते हैं एक ही मज़मून कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह दोहराया जाता है, तो तसरीफ। महज तर्जमों की मदद से कुरान को गहराई और गहराई के साथ समझना मुमकिन नहीं, गहराई तो आप समझ गए ना डेप्थ, तो गहराई क्या है, गहरा होता है इस तरह और गहराई इस तरह, यानी उसको सराउंड करना। बिलखसूस मक्की सूरतों की जामियत और पुख्तगी, जिसे खुद कुरान ने अहकाम का नाम दिया है, इसका बयान सबूत है, बयान कहते हैं वाज़े क्लियर को। क्या पता चला कि मक्की सूरतों में अमूमन बहुत ज़्यादा जामियत पाई जाती है और पुख्तगी होती है, तो सारी बात का अभी तक का खुलासा क्या बना कि इस तरह मुख्तलिफ अंदाज से सीखने से हम कुरान को और अच्छी तरह से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि नज़म कुरानी के सिलसिले में कोई अफराद और तफरीद तो नहीं हुआ, यानी मुसलमानों ने इस कुरान को समझने में कुरान की सूरतों के अंदर जो मैसेज है कहीं उसमें कमी बेशी तो नहीं की, इसको भी थोड़ा देखिए। अफराद और तफरीद कहाँ नहीं, नज़म जली का मामला भी यही है, बाज़ उलमा ने नज़म का सिरे से इनकार कर दिया, वो कहते हैं कोई नज़म नहीं है इसमें, बस जहाँ जो आयत अल्लाह ने डालनी थी डाल दी। दूसरे वो हैं जिन्होंने बेजा तकल्लुफ और तसन्नों से काम लिया और यहाँ तक आगे बढ़े कि बाद साबित शुदा सही अहादीस का भी इनकार कर दिया, यानी वो जिसको कहते हैं कि काफिया रदीफ जोड़ने में बाज़ दफ़ा सेहत का ख्याल नहीं रखा हदीस की और बाज़ दफ़ा सही को हटा दिया। अल्लाह ताला हमें अफराद और तफरीद से बचाए। मैं कुरान पाक का एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ, इस मौजू पर जिन्होंने लिखा वो हमसे बहुत बड़े थे, हम उनकी खाके पा भी नहीं, लेकिन एक सीधे सादे मुसलमान की हैसियत से मैं ना किसी आयत का इनकार करता हूँ और ना किसी सही हदीस का, यही एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए ना, ना तो मैं नज़्म का मुनकर हूँ कि कुरान में नज़्म नहीं है, रब्त नहीं है समझे, या मनहज सलफ़ का यानी जो हमारे पुराने लोग कुरान को किस तरह समझते थे। कुरान में तदब्बुर, तफक्कुर और ताक़ुल को ज़रूरी समझता हूँ। तदब्बुर क्या है? दुबुर से, अफला या तदब्बरूनल कुरान, सूरत मोहम्मद में आता है, यानी उसके पीछे लग जाना। तफक्कुर के फ़िक्र, उसकी फ़िक्र क्या है, उसमें सोच का नुक्ता क्या है। और ताक़ुल अक़ल से, कि ये बात अक़ल में कितनी आती है। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसके अजायब व असरार कभी ख़त्म ना होंगे। लोग क़यामत तक नए नए मोती चुनते रहेंगे। अलबत्ता इसमें सख्त एहतियात की ज़रूरत है, कोई तावील व तफसीर ऐसी ना हो जो वही जली और वही खफी से या इजमा से मुतसादिम हो। वही जली क्या होता है? कुरान की वाज़े आते। वही जली आप किसको कहते हैं? कुरान को। और वही खफी हदीस को, ठीक है, जो हदीस के ज़रिए पैगाम दिए गए वो भी वही ही का हिस्सा है, ठीक है। अलबत्ता इसमें सख्त एहतियात की ज़रूरत है। क्या? तावील तफसीर। तावील क्या होती है? अपनी मर्ज़ी से तावील कर लेना कुछ चीज़ों की, या तावील असल में तो लफ्ज़ ठीक है, उसकी रूट में जाना, अव्वल से है ना, बेस में जाना। और वही जली और खफी के बाद इजमा क्या है? असलाफ में जो उलमा ने एक चीज़ पे इत्तफाक कर लिया था। इस किताब की रोशनी में कुरान का मुताला कैसे किया जाए? यानी अब आपको एक मशवरा ये दे रहे हैं कि आप कैसे इसको अपने प्रैक्टिकली अमल में लेकर आएं। इस किताब के कारी से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपना ज़ाती कुरानी नुस्खा लेकर हर सूरत को मेरी तकसीम के मुताबिक सुर्ख कलम की लकीर से बड़े बड़े अज्जा में तकसीम कर ले। अब ये पहली एक्टिविटी आप नोट करें, यानी सादा कुरान पाक आप लेके सुर्ख कलम की लकीर से बड़े बड़े अज्जा में तकसीम करें। आप पढ़ेंगे आयते 1 से लेके 4 तक ये मजमून है, तो आप लोग दौरे कुरान करते हुए अपना सादा कुरान जो सामने रखें, तो जहाँ जहाँ वो आयतें आएंगी ना, तो उनको एक ब्रैकेट में कर लें या एक रंग का हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस किताब में जिन अहम अल्फाज की निशानदेही की है, इन्हें अपने ज़ाती कुरानी नुस्खे में पीले कलम येलो हाईलाइटर की मदद से निशान ज़दा कर ले, यानी जो अहम अल्फाज हैं, ठीक है। हाशिए में हर पैराग्राफ का ज़ेली मज़मून और मौजू लिख ले। हाशिया होता है ना कुरान के साथ पे, तो उधर पैराग्राफ जहाँ होगा ना उसके ऐसे ब्रैकेट सी लगा के, तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि इसका क्या, यानी जो कुछ इस बुक में लिखा हुआ है ना, इसको आपने अपने कुरान पे लिखना है जिससे आप कुरान पढ़ते हैं। और आप देखिए पारा सुनने के दौरान अगर ये चीज़ें लिखी हों आपने, तो आपको उसका फहम और अच्छा समझ आएगा। फिर बार बार एक ही सूरत का मुताला करता जाए, ये भी एक अमल है, ताकि आपके अंदर उसका मज़मून रच जाए। मुझे यकीन है चंद सालों में वो हर सूरत को इब्तदा ता इंतहा जोड़ने के काबिल हो जाएगा। ये भी ऐन मुमकिन है कि वो इन गोशों को दरियाफ्त कर ले और इन मनाजिर को देख ले जो मुझसे ओझल रहे, यानी इन्होंने जितना गौर व फिक्र किया इनको इतनी बात समझ आई। आप इस पे मज़ीद गौर व फिक्र करेंगे आपको और भी आएंगे। और ये सच है, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुरान इज़ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, एज मच एज टाइम यू स्पेंड विद इट इट विल ओपन इट्स सीक्रेट्स टू यू। यानी कुरान बेहतरीन दोस्त की तरह है, जितना ज़्यादा करीब आप इसके बैठते हैं, जितना ज़्यादा इसको वक्त देते हैं, ये अपने राज सुनाता है। और ये इसमें कोई झूठ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वो एक शेर भी लिखते हैं कि कभी नई भी होती हैं कभी पुरानी होती है, हर अच्छी सूरत लेकिन जानी पहचानी होती है। नए मनाजर की धुन में आगे बढ़ता जाता हूँ, सफ़र मज़े से कटता है, हमदम हैरानी होती है। यानी वही बात है कि कुरान से फिर ऐसी दोस्ती हो जाती है कि इंसान उसी के साथ ही वक्त गुजार रहा होता है। इस किताब में नज़में खफीफ में ज़्यादा बहस नहीं की गई, ये मुफस्सरीन का काम है, और तमाम बड़ी बड़ी तफसीरों में इस मौजू पर अच्छा खासा मवाद मौजूद है। वो मुश्किल अल्फाज की तशरीह करते हैं, एक बड़ी आयत में मौजूद छोटे छोटे जुमलों के बाहमी रब्त की निशानदेही करते हैं। इसके कुछ इशारे मैंने सूरत अत्तीन के नज़म के सिलसिले में कर दिए हैं, कारी यानी पढ़ने वाला इसको वहाँ पढ़ ले। अब इतनी बात से ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, शौक बढ़ा के कम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये कहते हैं कि नमाज तरावी से पहले या बाद खुलासा। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में और हमारे उलमा, खतीब और मौलमीन कुरान अगर इस खुलासे की मदद से कुरानी सूरतों का जामे तारुफ पेश कर सकें, तो इस उम्मत के ज़हीन अफराद को कुरान फहमी के सिलसिले में बहुत मदद मिल सकती है और वो मज़ामीन कुरान से मुनासबत पैदा कर सकते हैं। यानी आम लोग शायद इतने क्विक ओवरव्यू को ना समझ सकें, लेकिन जो पहले से सीखे होते हैं उनको इस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह के काम में गलतियों के इम्कानात बहुत होते हैं जो हक है, वो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में रासिख कर दे, जो गलत है वो दिलों और दिमागों से महव कर दे। यानी ज़ाहिर आप कुरान पे गौर व फिक्र कर रहे हैं ना, तो हमेशा ये इहतमाल, ये ख़तरा रहता है कि मैं कोई ऐसी बात ना समझ जाऊँ जो नहीं थी, समझने में कमी ना हो। तो फिर इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सही बात याद रखवाए और जो गलत चीज़ थी या मौजू से हटी हुई थी उसको जहन से निकाल दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई गलती जानबूझकर नहीं की। बशरी तकाज़ों के तहत ना दानिस्ता गलती हो सकती है, फ़हम का कसूर हो सकता है, लेकिन मैं अपनी किसी गलती पर इसरार करना नहीं चाहता। अहले इल्म से दरख्वास्त है कि वो गलतियों की निशानदेही करते हुए इसलाह फरमाएं ताकि फ़ौरन अगले एडिशन में तब्दीली की जा सके। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और इनके लिए भी दुआगो हूँ जिन्होंने किसी न किसी तरह मेरे काम में मुआवनत की, मेरा हौसला बढ़ाया, मुश्किल अय्याम में ढारस बंधाई और मेरे लिए दुआगो रहते हैं। बिलखसूस उस्ताजी, उस्ताजी किसको कहते हैं? मेरा उस्ताज, उस्ताद कौन? मौलाना डॉक्टर सुहेल हसन साहेब मतज़िलाल, यानी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, महदूमी जनाब हाफिज़ मोहम्मद अदरीस साहेब और बीवी हुमा चिश्ती, बेटी हुसैन चिश्ती। यानी इन्होंने अपने कुछ प्यारों के नाम लिए जो मेरा अहल है, अल्लाह ने तो जान ही लिए, मैं यार आप ना भी पढ़ें तो बहरहाल ये आखिर में अपनी बीवी बहन और सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस किताब में मदद की। और इसमें मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सुन रहे हैं तो आप मेरा कर दें। आप देखिए कि एक एक चेन चलती है ना, एक चीज़ के करने कराने में बहुत सारी चीज़ें आगे से आगे जाती हैं। और ये वो चीज़ है कि जो मेरे आपके लिए हमेशा सीखने का ज़रिया बनती है। तो ये था इब्तदाइया जो कि लिखने वाले ने लिखा। आगे आप देखेंगे ना पेज 9 से लेके अगले चंद सफ़ों में तकरीज़। तकरीज़ क्या होता है? करजा से, काफ रा जोए है ये। ये कुछ लोगों ने इस किताब को पढ़ने के बाद क्या समझा, ठीक है? तो ये भी आप लोग चाहिए तो बाद में पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरों ने इससे कैसे लिया। क्योंकि आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि हम तो भी फिर भी नए नए लोग हैं, हमें तो नहीं इतना पता। तो ये जो हवाले होते हैं, मसलन जैसे पहले इन्होंने हाफिज़ मोहम्मद अदरीस साहब का लिखा है जो डायरेक्टर है इदारा मारफ इस्लामी के, तो उन्होंने जो लिखा ये आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे आपका शरह सदर हो जाएगा। और फिर अगले पेज में कि डॉक्टर सुहेल हसन साहब हैं, कोई उनके बारे में लिखा है। फिर उसके बाद डॉक्टर तौसीफ़ुर रहमान साहब हैं, उनका लिखा है। तो ये आप पढ़ें। और आखिर में फिर हाफिज़ आकिफ सईद साहब हैं। तो इन सारों ने जो इस तरह इसको समझा, यकीनन आप इस भी इसको अच्छा ही पाएंगे इंशाल्लाह। हम अपने नेक्स्ट सेशन में पेज 13 से मुख्तसर असूलुल तफसीर लेंगे। ये बहुत अहम है क्योंकि इसको पढ़ने से आपको, मुझे लगता है कि वाकई तफसीर के बारे में पता चलेगा।